نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما وزدنا علما. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے بہت، الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرض روزے ہمارے مکمل کروائے اور اب ہم شوال کے مہینے میں داخل ہو چکے. ویسے تو ہر مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، مگر کچھ مہینوں میں کچھ کام ایسے ہیں جن کی خصوصی طور پہ بہت اہمیت ہے، جن کی وجہ سے ان مہینوں کی بھی قدر و منزلت ہے. مثلا رمضان میں فرض روزے ہیں، ذی الحج میں حج آ جاتا ہے، پھر اسی طرح شعبان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اور محرم میں جو عاشورہ کا روزہ ہے وہ ہوا کرتا ہے، اور یہ جو شوال کا مہینہ اس میں بھی 6 روزے ایسے ہیں کہ جن کی اس قدر اہمیت ہے، اتنے زیادہ وہ اہم ہے کہ ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے، اب یہ دھیان رکھیے گا کہ رمضان کے فرض روزے جس نے رکھ لیے اور اس کے بعد پھر 6 روزے، یہ نفلی روزے ہیں، شوال کے مہینے میں رکھ لیے تو پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب ہوگا. اور اگر ہمیشہ ہی ایسا کرتا رہے گا، سوچے ہر سال پورے سال کے روزے رکھے گا، تو گویا اس نے ساری عمر روزے رکھے، صائم الدہر ہو گیا وہ، یعنی ساری زندگی روزے رکھنے والا. یعنی اس میں کتنا بڑا ثواب بتایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ بھی بہت بڑی مہربانی ہے کہ اس نے ہر عمل کا، دیکھیں ثواب کم از کم 10 ٹائمز رکھا ہے نا، تو جب کسی نے رمضان کے 30 روزے رکھے اور پھر 6 یہ روزے رکھ لیے تو یہ کتنے ہو گئے؟ 36 ہو گئے. اور 36 کو ملٹیپلائی کریں ذرا 10 سے، 360 ہو گئے. تو جو لونر کیلنڈر ہے، جو قمری سال ہے، اس کے دن کتنے؟ 360. اور وہ بھی کتنے بنے؟ 360. تو 40 روزے جو ہیں، 36 روزے رکھنے پر اللہ تعالیٰ کے نزدیک 360 روزے شمار ہوں گے. اس طرح پورے سال کا سمجھ لیں کہ اجر مل گیا، ثواب مل گیا. اور اگر سارا سال، یعنی ساری زندگی وہ ہر سال ہی ایسا کرتا رہے گا، تو انشاءاللہ باقی جو ہماری زندگی رہ گئی ہے، سمجھ لیں اس میں ہم روزے دار کہلائیں گے. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمت ہے، اور آخرت کی کمائی کرنے کا کتنا اچھا موقع ہے نا. اور اگر رمضان کے روزے چاند کی وجہ سے 29 ہی رہ جائے، تب بھی یہ 30 ہی شمار ہوں گے، کیونکہ ہر مسلمان کی نیت تو یہی ہوتی ہے نا کہ چاند نظر نہیں بھی آئے تو تیسواں روزہ بھی رکھوں گی میں. تو اس لحاظ سے 29 روزے رمضان کے اور 6 عید کے، کل پھر یہ بنے کوئی 35 بن گئے. اس سے بھی پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب ملے گا. تو اتنی بڑی خوشخبری ہمیں دی گئی، تو اب ہمیں یہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں کہ ایک روزہ چاند کی وجہ سے رہ گیا تو ثواب پورے سال کا ہوگا نہیں ہوگا، کیا کریں کیا نہیں کریں. اور اس کے اندر پورے ماہ شوال میں جب مرضی روزے رکھ لیں گے تو 6 روزے بس کاؤنٹ کرنے ہیں. اس لیے کوئی بھی یہ نہیں سمجھے کہ عید کے نیکسٹ ڈے سے ہی ہم شروع کریں گے تو پھر ہی ہوں گے، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. हाँ, आसानी के लिए कोई अपना करना चाहे तो जरूर कर सकता है, क्योंकि बाज लोग कहते हैं कि ईद के अगले दिन से ही जो पहले 6 हैं वो ही रखने का है, बाकी पूरे महीने में अगर रखे तो फिर नहीं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि ईद के नेक्स्ट डे से ही, जिसको आप टरू कहते हैं, उस दिन से ही आप स्टार्ट कर सकते हैं रोजा। सिर्फ ईद के दिन नहीं रोजा रखना, ईद के अगले दिन से ही आप रोजा स्टार्ट कर सकते हैं, इसकी इजाजत है। लेकिन अगर आप ये कहें कि जरूरी है उस दिन रोजा रखना, नहीं, जरूरी नहीं है। पूरे महीने में कहीं पे भी आप 6 रोजे रख लें। अब बात यह है कि हमारे लिए मुश्किल कब होती है कि जब पहले तो हम ईद के बाद, ईद ईद के मूड से ही निकलते हैं। पहले एक हफ्ता तो हमें ईद के मूड से नहीं निकलने में लग जाता है कि भाई अभी तो ईद गुजरी है, अब फौरन ही रोजा रख ले। नहीं, अभी बाद में रख लेंगे ना, अभी तो गुजरी ईद। अच्छा, वो आपके 6-7 दिन उसमें लग गए। फिर उसके बाद 7-8 दिन वैसे जो नापाकी के होते हैं वो भी निकाल दें, आधा महीना तो इसी तरह गुजर गया। फिर बाकी वीकेंड्स वगैरह पे हमारी वो हो रही है, क्या नाम है उसका, ईद की पार्टीज, या वीकडेज में भी ईद की पार्टीज हो रही हैं। अब वो ईद की पार्टीज ही खत्म नहीं होके दे रही। अब वो ईद की पार्टी खत्म हो तो फिर कहीं रोजे रखेंगे ना हम, वो भी दिन बीच में से निकाल दे तो रह क्या जाता है पीछे। फिर उसके बाद सवाल करने थे, पहले फर्ज रोजे रख लें कि पहले नफली रखें? वो दोनों ही रख लो, इस वक्त आसानी है। मैं तो समझती हूँ कि फर्ज रोजे भी रख लेने चाहिए इस महीने में, और ये नफली रोजे भी रख लेने चाहिए। क्यों? इसलिए कि फर्ज रोजे फिर छूटते छूटते रह ही जाते हैं बाद में, वो सारा साल लोगों को ख्याल ही नहीं आता। अभी आप यानी एक तरह के उस साइकिल में हैं कि रोजे रखने की, अभी तो ये हाल होता है कि कोई चीज खाने लगते हैं तो एकदम ये ख्याल आता है हाय रोजा है, चाहे नहीं रोजा हो, क्योंकि आपने माशाल्लाह 30 दिन रखे होते हैं रोजे। तो अभी तो आपकी बॉडी भी इस मूड में है, उस वक्त आंख भी आपकी खुल जाती है सहरी के टाइम पे, और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ खाने लगे तो तब भी एकदम से एहसास होता है। तो इसका मतलब है आपकी बॉडी, आपका माइंड अभी तक उस मोड में है, तो बहुत आसान है अल्हम्दुलिल्लाह रखना इस महीने में रोजे भी, और मैं समझती हूँ कि तहज्जुद के लिए उठना भी बेइंतहा आसान है। मैं सबसे दरख्वास्त करूंगी कि प्लीज अपनी इस रूटीन को जाने ना दीजिएगा। कितना अच्छा आप सहरी के लिए आराम से उठ रहे थे, क्या हर्ज जाए कि अगर इसको जारी रखे? अभी भी जारी रख सकते हैं, और जिस टाइम पे आप पहले उठते थे, अब तो खैर तकरीबन 5-6 दिन ऊपर हो गए, मगर फिर भी आप देखेंगे उस टाइम पे ठक से आपकी आंख खुल जाती है। ये वो जो एक आपने 30 दिन तक रूटीन बना ली थी सहरी के टाइम उठने की, तो अल्हम्दुलिल्लाह, और बल्कि हम तो उससे भी पहले से उठ रहे थे ना, तो उससे भी पहले से उठने वाले जो थे, जो हमारे साथ यानी इन रातों में भी जागे रहे, उनकी तो आंख उससे भी पहले खुलनी चाहिए। इसका मतलब है कि हमें अल्लाह ताला ने बड़ा ही अच्छा मौका दिया कि हम इस वक्त को अवेल कर सकते हैं। पहले ये होता था रमजान में, देखें कितनी घंटे की नींद होती थी, आप खुद गिने तो, आप तरावी से वापस आते हैं तो ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका होता, फिर उसके बाद आप अपने ये सेशन के लिए जागते थे, और यानी अगर आप टोटल देखें तो आपकी 4 घंटे की नींद होती होगी, फिर दिन में 1 घंटा चलो आप सो जाते, चलो बहुत किया 5 घंटे की हो गई, इससे ज्यादा क्या होती थी नींद। हाँ, तो अब आप अगर गिने तो मुझे तो लगता है कि हम बहुत काफी सो रहे हैं। अब तो ऐसे लग रहा था ईद के बाद के, हालांकि उठ के भी सुबह यानी तहज्जुद के टाइम पे भी उठ के, तब भी आराम से 7 घंटे की नींद हो रही थी, कि ये तो बहुत बड़ी हमें प्रिविलेज मिली कि हमें इतनी सारी नींद मिल गई। क्योंकि अगर आपने वाकई रमजान में सही से तरावी पढ़ी और तहज्जुद के टाइम से उठे, सहरी से पहले से आप उठे हुए थे, तो आपके लिए फिर अभी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल आसान हो जाना चाहिए। बल्कि अभी आप तो खुश होंगे कि मुझे तो उल्टा ज्यादा नींद मिल रही है। तो इंशाल्लाह ताला इस तरह से अगर आप इसको देखेंगे ना, तो आपके लिए सारी चीज तहज्जुद में भी उठना आसान और रोजे रखना भी आसान। देखें, एक किस्सा आपके सामने रखती हूँ, लुकमान अलैहिस्सलाम का। आपको मालूम है कि वो अपनी अक्ल, समझ, फिरासत कितने मशहूर है, और ये सब देखते हुए उनके मालिक ने उनको आजाद कर दिया। मालूम है ना आपको, गुलाम थे ना, तो उन्होंने उनको आजाद कर दिया, क्योंकि बड़े ही समझदार, बहुत बेइंतहा अकलमंद है, बहुत ही हकीम लुकमान, ऐसी तो नहीं ना कहते, बहुत हिकमत की बातें करते थे ना। तो इनके मालिक ने इनको आजाद करने के बावजूद इनसे मेल जोल जारी रखा। वो लुकमान अलैहिस्सलाम से बहुत ही मुतासिर थे। एक दिन उस आका ने लुकमान को बुला भेजा। जब वो आए तो कहने लगे कि मैं तुम्हारे लिए खरबूजा लाया हूं, इसको खाओ। अब आका जो थे वो खरबूजा काट काट के लुकमान को देते जाता और लुकमान अलैहिस्सलाम खाते जाते। जब सारा खा लिया, आखिरी टुकड़ा रह गया था, तो आका ने अपने मुंह में उसको डाला और डालते ही बाहर उगल दिया। इस कदर कड़वा कसीला था कि हलक से आगे नहीं जा सका। उसने लुकमान से कहा, मैं तुमको उस वक्त से सारा खरबूजा खिलाता रहा, तुमने चूं तक नहीं की, सारे ही खा गए। हालांकि तो ना काबिले बर्दाश्त है इस कदर कड़वा, ऐसा क्यों किया तुमने? अब देखिए लुकमान अलैहिस्सलाम को, फरमाया, आपके मुझ पे इस कदर एहसानात हैं कि मेरे दिल को गवारा ही नहीं हुआ कि आप मुझे इतनी खुशी से खिला रहे हैं और मैं इनकार कर दूं, मुझे नहीं ये गवारा हुआ। अगर एक गुलाम अपने जैसे एक इंसान का इस कदर एहसान मानता है कि जिसने उस पर कभी जिंदगी में कोई एहसान किया था, तो रब्बुल आलमीन का एहसान हमें किस कदर मानना चाहिए। इंसान जब इंसान पर एहसान करे तो वो उसका दिया हुआ कड़वा भी खा ले बगैर चूचरा के, तो रब जब एहसान करे तो उसके दिए हुए को जो बजाहिर कड़वा मालूम होता है मगर अंदर उसके अंदर फायदा और खैर ही है, जो बजाहिर मुश्किल और जान पे गरां और बहुत ही इंसान को ऐसा मालूम होता है कि हाय कैसे करें, और बहुत इंसान के लिए इन तकलीफ दे तो नहीं कहेंगे, ये तो कोई भी वादा तकलीफ दे नहीं है, मगर बड़ी मुश्किल है नफ्स पे, या कोई भी आप अपना मामला ले लें, आपको जिंदगी का कोई भी मामला तकलीफ दे लग रहा है, कोई बीमारी आ जाती है, कोई और मामला आ जाता है, बजाहिर कितनी मुश्किल तकलीफ दे कड़वी मालूम होती है, मगर इसके अंदर कितने फायदे और आपके लिए खैर हो, तो क्या इंसान उसको खुशी से कबूल नहीं करेगा? क्या रब का एहसान इंसान इतना भी ना माने जितना इंसान इंसान का मानता है? तो देखिए, कुछ भी फेज से आप गुजर रहे हैं इस जिंदगी में, चाहे कोई बीमारी का है, चाहे कोई और घर के मसले मसाइल का है, चाहे कोई औलाद से मुतल्लिक है, कोई भी चीज है, चाहे इबादत में आपका दिल नहीं लग रहा या दिल नहीं चाह रहा, मगर हमें ये बातें बेशक मुश्किल लगती हैं, लेकिन देखें रब के एहसानात हमारे पर किस कदर ज्यादा हैं, इतने ज्यादा हैं, उनको लेते हुए तो कभी हमने ये नहीं सोचा कि इतने एहसानात तो हम पे पहले ही हैं, इतनी नेमतें तो हम पे पहले ही हैं, तो हम और नहीं हमें चाहिए। हाँ, लेने के मामले में तो हम बड़े हरीस हैं, मगर जहां कुछ करने का मामला आ जाए वहां हम फौरन यानी बिल्कुल सुस्त हो जाते हैं, वहां पे हम बिल्कुल यानी अब हौसला छोड़ देते हैं, वहां पे बहुत जल्दी गिले शिकवे करने लगते हैं, वहां पे हम ये कहने शुरू जाते हैं, अगर इबादत के तनाजुर में इसको देखें तो हम कहने लगते हैं भला फर्ज तो नहीं है ना, फर्ज नहीं है तो फिर कोई बात नहीं है, अगर नहीं भी किया तो। बेशक फर्ज नहीं है। फर्ज तो लाजिमी चीज को कहते हैं ना, जो आपको करना ही करना है, उसमें कोई चॉइस ही नहीं है। चॉइस तो रखी गई नफल में, नफली इबादत में इंसान को अल्लाह ताला ने खुला छोड़ दिया, चाहो तो कर लो, चाहो तो ना करो। अपनी खुशी से करोगे तो बहुत बड़ा अजर मिलेगा, नहीं भी करोगे तो अल्लाह ताला की तरफ से कोई गुनाह नहीं है तुम्हारे ऊपर। फिर कोई भी अल्लाह ताला उसके ऊपर पूछेंगे नहीं कि क्यों नहीं किया, गोया कि अल्लाह ताला ने आपको मजबूर नहीं किया कि आपने जरूरी करना है। दिल की खुशी से अपने रब के लिए जो एक्स्ट्रा करना चाहता है तो फिर उसका फायदा बहुत ज्यादा है। अल्लाह ताला ने फरमाया, एक हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला का इरशाद है, जो शख्स मेरे किसी दोस्त से दुश्मनी करे मैं उससे जंग का ऐलान सुनाता हूँ, और मेरी पसंदीदा चीजों में से किसी भी चीज के जरिए मेरा बंदा मुझसे इस कदर करीब नहीं होता जिस कदर उन चीजों की अदायगी के जरिए करीब होता है जो मैंने उस पर फर्ज की है, और मेरा बंदा नवाफिल के जरिए मेरा कुर्ब हासिल करता रहता है, यानी पहले फर्ज अदा करता है उससे अल्लाह के करीब हो जाता है, और उसके बाद जब एक्स्ट्रा करता है तो और ज्यादा अल्लाह ताला के करीब हो जाता है, यहाँ तक कि वो मुझे महबूब हो जाता है। यानी अगर आप अल्लाह के महबूब बनना चाहते हैं तो फिर फर्ज के अलावा नवाफिल में भी दौड़ लगानी पड़ेगी, नवाफिल में भी आगे बढ़ना पड़ेगा, नवाफिल में भी मुकाबले करने पड़ेंगे। सो जब वो मेरा महबूब बन जाता है तो मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुनता है, और उसकी आंख बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, और उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है, और उसका पैर बन जाता हूँ जिससे वो चलता है। और इसकी महबूबियत और नज़दीकी को इस कदर, महबूबियत और नज़दीकी उसको इस कदर बुलंद कर देती है कि वो मुझसे जो सवाल करे तो इसका सवाल पूरा कर दूँ, और जो मांगे उसको दूँ, और अगर वो मुझसे पनाह तलब करे तो इसे आफात से पनाह दे दूँ। क्या मतलब है इसका कि उसका हाथ बन जाता हूँ, उसका पैर बन जाता हूँ, उसकी आंख बन जाता हूँ? इसका मतलब क्या है कि यानी फर्जों की मुकम्मल करने के बाद इंसान जब नवाफिल अदा करता है ना, तो ये अल्लाह ताला को इतने पसंद आता है क्योंकि अल्लाह ने उसके ऊपर फर्ज नहीं किया। अल्लाह ताला उसको, ये नहीं है उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, उसका दिल चाहे करे नहीं, दिल चाहे नहीं करे। लेकिन यहीं पे तो बंदा प्रूव करता है कि अल्लाह मुझे आपसे मोहब्बत है, या आपने मुझे ऑब्लिगेटरी नहीं भी किया, मेरा दिल चाहता है कि मैं आपके लिए करूं और करूं और ज्यादा। जो आपने फर्ज किया वो तो करा ही करा, लेकिन अल्लाह मेरा तो अभी भी जी नहीं भरा, मेरा तो जी चाहता है कि मैं आपके रास्ते में और मेहनत करती ही रहूं, और रोजे रखूं, या अल्लाह और इबादत करूं और नफल पढ़ू। हाँ, और अल्लाह ताला के वो इतना करीब होता चला जाता है कि इतनी इस हद तक नजदीकी हो जाती है, इस हद तक कुर्ब हो जाता है कि उसकी तबीयत और उसकी अज़ा जो है नेकियों से मानूस हो जाते हैं। ये हाथ पांव आंख नाक कान, ये सब नेकियों से मानूस हो जाते हैं, गुनाहों से इन सबको परहेज हो जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि अभी तक हमारा जो माइंड है वो अभी रमजान में ही चल रहा है कि तब शावर में भी खड़े हो तो वो डर लगता है, आई पानी ना मुंह में चला जाए। अच्छा, फिर याद आता है रोजा तो है ही नहीं, है ना? तो इसका मतलब आपके बॉडी पार्ट्स भी नेकियों से मानूस हो जाते हैं। तो फिर ही ये होता है कि ये जो कहा गया ना कि जब वो मेरा महबूब हो जाता है तो मैं उसका कान बन जाता हूँ, उसकी आंख बन जाता हूँ, उसके हाथ बन जाता हूँ, इसका मतलब क्या कि उसके जो आज़ा हैं अल्लाह की रजा के सोर्सेस बन जाते हैं, जरिए बन जाते हैं, और बंदा इनको यानी अल्लाह की नाराजगी में फिर इस्तेमाल नहीं करता। जहां अल्लाह चाहता है वहीं फिर नजर उठती है, जिस चीज के सुनने से अल्लाह राजी होता है उसी को वो सुनता है, जहां जाने का अल्लाह ने हुक्म दिया वहीं जाता है, जिस चीज के छूने या पकड़ने का हुक्म अल्लाह ताला ने दिया उसी को छूता है, उसी को पकड़ता है। और ये बहुत बड़ा मकाम है, जिसको नसीब हो जाए इसके बहुत बड़े नसीब है, बड़ा खुश किस्मत है। ऐसे बंदे के लिए अल्लाह ताला मददगार होते, फिर उसको अपनी मर्जी के कामों में अल्लाह ताला लगाते, उसको अपनी मर्जी के कामों में इस्तेमाल करते, उसके लिए नेक अमल की अदायगी करना, उसमें आगे बढ़ना आसान हो जाता है। ऐसे बंदे का मर्तबा इतना बुलंद हो जाता है कि अल्लाह ताला फिर उसके सवाल को जरूर पूरा करते हैं। और जिन नापसंदीदा चीजों में, तकलीफ में, मुसीबतों में वो अल्लाह से पनाह की दुआ करता है, अल्लाह ताला उसको जरूर अपनी पनाह में ले लेते हैं। और ये बुलंद मकाम किस तरह मिलता है? नवाफिल के जरिए। और नफल वो ही अदा कर सकता है ना जो फराइज का पाबंद होता है, जो फर्जी पूरे नहीं करता उसने बेचारे नफल क्या अदा करने। तो इससे ये नहीं है मतलब कि आप फर्ज छोड़ के तो नफलों की तरफ भागने शुरू हो जाए, नफल तो बाद में आएंगे, वो तो आप एक्स्ट्रा कर रहे हैं, फर्ज पहले हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला हमने नियत यही कर लेनी है कि इंशाल्लाह हमने अब से साइमुद दहर बन जाना है, कि जब इंशाल्लाह ताला वहां पे हशर के मैदान में ना सबके अलग अलग ग्रुप्स बनने हैं ना, कोई नमाजियों का ग्रुप, कोई रोजेदारों का ग्रुप, कोई सदका खैरात करने वालों का ग्रुप, कोई चोरों का ग्रुप, कोई डाकुओं का ग्रुप, कोई कातिलों का ग्रुप, इसी तरह अम्ताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून भी तो है ना, तो अलग अलग हो जाओ, मुजरिमों को भी कहा जाएगा। फिर सब अपने अपने ग्रुप्स के मुताबिक, जिसमें जो खसूसियत सबसे ज्यादा ना, कोई रहम दिलों का ग्रुप, तो जिसमें सबसे ज्यादा खसूसियत जो होगी ना वो उस ग्रुप में होगा। तो आप चाहते हैं कि आप रोजेदारों के ग्रुप में हो, तो फिर हम मंडे थर्सडे का भी रोजा रखेंगे इंशाल्लाह। तो और हम इंशाल्लाह ताला ये 6 रोजे रख के साइम उद्दहर हो जाएंगे, तो फिर हर साल इंशाल्लाह साइम उद्दहर होंगे, सारी जिंदगी के हम रोजेदार हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। इतना आसान है ना, अल्लाह ताला ने हमारे लिए देखिए कितनी ही आसानियां कर दी है ना इंशाल्लाह ताला। आप में से कौन कौन चाहता है कि जन्नत में आपका एक महल बन जाए? हर कोई चाहता है ना जन्नत में मेरा एक महल बन जाए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब से आपने क्या करना है, किसी भी वक्त में दिन में बहुत ही आसान नुस्खा है आपके लिए। कोई लोग पूछते रहते ना कोई वजीफा बताएं, तो देखिए यही वजीफे हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिए, ये वजीफे ही हैं। तो क्या करें, 10 दफा कुल हु अल्लाह सूरह इखलास जो है वो पढ़ लिया करें, आपके लिए जन्नत में एक महल तैयार हो जाता है। ठीक है, इंशाल्लाह आसान है ना, बहुत बहुत ही आसान नुस्खा है अल्हम्दुलिल्लाह। और एक और काम करें, बहुत आसान काम है और उससे आपको अजर भी इंशाल्लाह मिल जाएगा, ये बातें जाके आगे किसी को बता दे। देखिए किसी नेकी का सबब बन जाना, उससे क्या होता है, उस नेक काम का सवाब आपको भी मिलेगा, उसको भी मिलेगा। जितना अमल करने वाले को मिलेगा ना उतना ही आपको मिल जाएगा। एक सूरत इसकी ये भी है कि आप नेक काम करने वाले के लिए असबाब मुहैया कर दें, मसलन आपने उसको सिखा दिया कंप्यूटर का, आपने उसको, आपको ने उसको इन्फॉर्मेशन दे दी क्लास की, आपने उसको अगर कहीं लेकर जाना है तो गाड़ी में उसको ले गए और वहां पे कुछ सुनवा दिया, या नेक काम करने वाले को नेकी करने के लिए फारिग आप कर दें, उसका काम आप खुद कर दें। ये भी एक सूरत है कि आपने उसको फारिग कर दिया ताकि वो मसलन किसी का बच्चा है थोड़ी देर के लिए, चलो मैं देख लूंगी, आप ये नेकी का काम कर लें। मसलन आपका ये काम है, आपको इसकी वजह से मुश्किल होती है, आप इसकी वजह से नहीं करती नेकी, तो आप ऐसा करें मैं ये आपका काम कर देती हूँ, आप जाएं और जाके ये सुन के आए। ठीक है, जैसे मसलन मेरे साथ होता था, ये मैंने आपको बात इसलिए नहीं पहले कभी बताई कि अगर पहले बता देती तो फिर बड़ी मुश्किल हो जानी थी, तो सिर्फ आपको इसको समझाने के लिए बता देती हूँ कि मेरे घर पे बहुत सारे दफा ऐसे होता था कि कोई लोग कोई खाना भेज देते थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे मुझे क्या फायदा होता था कि वही टाइम जो मेरा कुकिंग में लगना होता था तो वो मैं मुझे इतनी खुशी होती थी इस वजह से, नहीं कि वो खाना मतलब क्या किसी ने भेजा, इस वजह से कि अल्हम्दुलिल्लाह अब लो मेरे पास 1-1.5 घंटा जो मैंने किचन में लगाना था वो मेरा बच गया। मैं खुशी खुशी जाती थी जल्दी से अपनी किताबें खोल के फिर बैठ जाती थी कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये टाइम मिल गया, और दिल से दुआएं निकलती थी उसके लिए जो कि लेकर आया होता था कि अल्हम्दुलिल्लाह वो उसने लेकर आ गया, इसकी वजह से मुझे इसने मौका दे दिया कि मैं ये वक्त अल्लाह के जिक्र में गुजार सकूं। तो यानी आपको बताना ये चाहती हूँ कि देखिए अगर वैसे अगर मैं उस वक्त बता देती ना पहले तो फिर कानों का एक तांता बन जाता, फिर मेरी वजह से लोग तकलीफ में आते। तो अभी इसलिए बता रही हूँ आपको सिर्फ समझाने के लिए कि देखिए कई दफा ऐसी सूरतें होती हैं कि कोई किसी मजबूरी की वजह से, मेरी तो खैर ऐसा मजबूरी अल्लाह ना करे कुछ नहीं थी, लेकिन कोई लोग ऐसी किसी मजबूरी की वजह से किसी ऐसी मुश्किल वजह से वो कहते हैं हम ये काम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है। तो आप थोड़ी देर के लिए अगर उनका वो काम कर दें और उनको फरागत दे दें, और उसने अगर कोई बात दीन की समझ ली या कोई भी और काम कर लिया, ऐसा मस्जिद जाने में उसको कोई मुश्किल है या उसको क्लास लेने में कोई मुश्किल है, आपने वो सॉल्व कर दी ना, तो आपको जितना वो अमल करेगा उतना आपको ये अजर मिल गया बैठे बिठाए। तो इस चीज के लिए हरीस रहना चाहिए, चीज के लिए देखते रहना चाहिए कि कहाँ पे अजर के मौके हैं, कहाँ पे मैं कुछ ऐसा कर सकती हूँ कि जिससे कि मैं किसी को इतनी फरागत दे दूँ, या कौन सी ऐसी कोई मजबूरी है जिसकी वजह से कोई नहीं कोई काम कर पा रहा। तो जब हम इंशाल्लाह इस चीज की खोज में रहेंगे तो हमें मिल भी जाएंगे ऐसे मौके। फिर ये हमने करना है कि घर में झगड़े नहीं डालने, लेकिन ये करना है कि हम ये बात अपने घर के मर्दों तक पहुंचाएं कि जैसे हमें हदीस से पता चलता है कि जब कोई अच्छी तरह वजू करके मस्जिद को जाता है और सिर्फ नमाज ही के लिए जा रहा है, कोई और उसको धंधा शुगल नहीं है मस्जिद में, सिर्फ नमाज के लिए, और घर से वजू करके जाए, तो हर कदम पे उसका एक दर्जा बुलंद कर दिया जाता है और एक गुना माफ कर दिया जाता है। तो इंशाल्लाह ताला जब आप ये बात बताएंगी तो देखें आप खुद तो आपके लिए मस्जिद जाने की जरूरत नहीं है कि आप हर नमाज में जा रही हो, लेकिन आपने जब ये बात उनको बता दी ना, देखिए अभी हमने क्या बात की है कि जो भी इंसान नेकी की राह दिखा दे उसको भी उतना ही अजर है जितना अमल करने वाले को। तो जब आपने ये बता दिया और अगर आपके कहने की वजह से कोई चला जाता है मस्जिद, चाहे बेटा है चाहे हस्बैंड है भाई है कोई भी, तो आपको देखिए मुफ्त में कितना अजर मिल गया ना, एक उनका दर्जा बुलंद हुआ तो आपका भी एक हो गया, और एक उनका गुनाह माफ हुआ तो आपका भी हो गया, इक्वल आपको भी मिलेगा इंशाल्लाह ताला। तो आप घर में बैठी बिठाई आपको अजर मिल रहा है, आपको और क्या चाहिए, इतना आसान है ना ये अजर कमाना। तो लेकिन मैं फिर कहूंगी कि घर में लड़ाई नहीं डालनी, ठीक है, मतलब ये बस बात बतानी है आपने इंशाल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला हम सबको अमल करने वाला बना दे, और अल्लाह करे कि इस तरह से हम देखें कितने छोटे छोटे काम है ना, लेकिन कितना अजर आप कमा सकते हैं। मुंह से कभी कभी आप ये जुबान को अगर इस तरह से इस्तेमाल करें कि इसके जरिए आप खैर की बात आगे पहुंचा दें, तो कितनी आसानी से आपने कितना कुछ इसी जुबान के जरिए कमाई कर ली। ये चाहे तो इस जुबान को बेकार भी आप वेस्ट कर सकते हैं इधर उधर की बातें करके, जिसमें कोई ना कोई फिर गुनाह की बात निकल ही आएगी मुंह से। तो जो लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ रमज़ान का अटेंड करते रहे प्रोग्राम, और जिन लोगों ने भी कुरान के साथ जुड़ने का प्रोग्राम उस वक्त से बनाया था, तो ज़रूर इंशाल्लाह मैं यही कहूँगी कि देर ना करें, जल्दी आ जाएं, जल्दी इसके साथ जुड़ जाएं, जितनी देर करेंगे उतना ही शैतान हावी हो जाएगा। ये कभी ना कहें कल करूंगी कल करूंगी कल करूंगी, क्योंकि हर कल जो है वो आज बन जाता है ना, हर कल आज बन जाता है, वो कल कभी नहीं आता जिसका हम इंतजार कर रहे होते हैं। तो देर किसी में नहीं करनी, नेकी के कामों में जल्दी करने वाले बन जाएं, और हम भी नेकी के काम में जल्दी करें कि आगे बात को पहुंचाने वाले बन जाएं। ये ना सोचे कल करूंगी और जाके कल बता दूंगी कोई बात नहीं, अब बताऊंगी कल बताऊंगी परसों बताऊंगी, उस उसके अंदर वक्त ही गुजर जाए, जल्दी कर लें ताकि ताकि नेकियां भी हम जल्दी जल्दी समेट लें। अस्माए हुस्ना में इस दफा है अल अव्वलु अल आखिर, अल अव्वलु अल आखिर। पहला क्या है? अल अव्वल, सबसे पहले। अव्वल तो उर्दू में भी हम कहते हैं अल अव्वल, वल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन। ये अल्लाह ताला ने कुरान में भी फरमाया कि जब कुछ भी नहीं था तो वो था, और अल आखिर के सबसे आखिर, जब कुछ भी नहीं होगा तो वो होगा, कुछ चीज भी नहीं रहेगी। और हर चीज फानी है, यानी अल्लाह की जात के सिवा। अब आप कहेंगे कि जन्नत वाले भी तो हमेशा रहेंगे, आखिर में वो भी तो रह जाएंगे, वो भी तो, उनको भी तो हमेशा की जिंदगी मिलेगी, और जहन्नुम वालों को भी। हाँ, लेकिन देखें, इसका जवाब भी है कि वो अपनी जाती पावर से जिंदा नहीं रहेंगे, वो तो अल्लाह ताला की बख्शी हुई है ना। जबकि अल्लाह ताला जो आखिर है ना, उसकी जो बका है वो किसी की मोहताज नहीं है, वो खुद से ही बाकी है। अगर कोई और चीज बाकी है या बाकी रहे, तो वो अल्लाह ताला के रखने से बाकी रह सकती है, बजाते खुद उसके अंदर कोई पावर नहीं। जन्नत दोजख में भी किसी को जो खालिदीन फीहा, हमेशा हमेशा रहेंगे उसमें, वो इसलिए नहीं है कि वो खुद ही बखुद ही उनकी चॉइस है और वो खुद इनकी इतनी अथॉरिटी है, बल्कि इसलिए है कि अल्लाह ने उनको हमेशा रहने दिया है। यही मामला फरिश्तों का, वो बजाते खुद जो है ना इमॉर्टल नहीं है, बल्कि अल्लाह ने चाहा तो उनको ये वजूद दिया कि जब तक वो चाहेगा उस वक्त तक वो मौजूद रह सकते, जबकि अल्लाह की जात इन चीजों के मोहताज नहीं, वो किसी के करने से हमेशा हमेशा जिंदा नहीं है, किसी के करने से हमेशा बाकी नहीं है, बल्कि वो खुद से, उसके अंदर इतनी कुदरत है कि वो दूसरों को भी बाकी रखे और खुद भी बाकी रहे। ठीक है, आज की दुआ है रब्बाना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ये सूरह आले इमरान की आयत नंबर 8 में है। ए हमारे रब, हमें सीधे रास्ते पर जो तूने लगा दिया ना, तो अल्लाह हमारे दिलों को टेढ़ा ना कर देना, अल्लाह अपने पास से रहमत अता करना। इन्नका अंतल वहाब, तू ही अता करने वाला, देने वाला तू ही है, वहाब तू ही है। तो ये बहुत ही जरूरी दुआ है हमारे लिए, इसलिए कि कोई पता नहीं होता किस दिन अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह ताला हम पे रहम फरमाना, लेकिन किस दिन इंसान हिदायत से पलट जाए, इस चीज का कोई भी नहीं कुछ कह सकता। एक लम्हे की ये देर ही होती है कि इंसान जो है ना, उसका माइंड चेंज हो जाता है, वो कोई बैठ के कोई बात सुनता है, किसी का कोई फलसफा सुनता है, किसी का कोई लेक्चर सुनता है, उसका दिमाग ही पलट जाता है। या ऐसा कुछ जिंदगी के अंदर कोई, अल्लाह माफ करे, कोई हादसा या ऐसी कोई खुशी मिल गई कि वो बस पहले अच्छा भला ठीक ठाक था, उसके बाद उलट रास्ते पे चल पड़ा। ऐसे भी लोग देखे गए हैं। तो सारी जिंदगी ये दुआ करनी है कि अल्लाह जो तू हमें इस रास्ते पे ले आया, तूने हमें हिदायत दी है, कुरान के साथ जोड़ा है, अल्लाह तू हमने तूने हमें सीधा रास्ता दिखाया है, सही अकीदा दिखाया है, अल्लाह इसके ऊपर साबित कदमी देना, इसी पे चलाए रखने रखना, अल्लाह ताला हमारे दिलों को अब टेढ़ा ना कर देना, अपने पास से रहमत देना। और कौन नहीं रहमत का मोहताज, हर वक्त ही हम अल्लाह की रहमत के मोहताज हैं। ठीक है, और इंशाल्लाह ताला कुरान पाक अब हमने दोबारा से स्टार्ट करना है। स्टार्ट तो आपने कर ही लिया होगा, क्योंकि जब भी कुरान को मुकम्मल करते हैं तो वो मुकम्मल यानी ख़त्म कभी नहीं होता, दोबारा से शुरू हो जाता है। तो जब भी आप सूरह नास पढ़ें, आखिर में एंड करते हैं, तो उसके बाद दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं। तो इंशाल्लाह ताला हमने दोबारा करना है। अगर हम 30 दिनों में पूरा कुरान मुकम्मल कर सकते हैं, तो क्या 1 महीने में हम 2 पारे नहीं कर सकते? 1 माह में 2-2.5 पारे भी तो करना मुश्किल नहीं है। तो सुबह फजर पे कुरान पढ़ने की आदत बनाइए, और चाहे थोड़ा पढ़े, 2 रकू 2.5 रकू पढ़ने में कोई मुश्किल नहीं है, 2 3 रकू भी आप पढ़ें तो इंशाल्लाह आराम से आपका पारा कुछ दिन में ही मुकम्मल हो जाएगा। तो अभी हमारा 1 महीने बाद सेशन होता है, तो इसमें आप जब आए तो कम से कम आपके 2.5 पारे मुकम्मल हो चुके होने चाहिए, तभी इंशाल्लाह रमजान तक हमारा 1 कुरान मुकम्मल हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो इसको अपनी पार्ट ऑफ रूटीन बना ले इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट टाइम हम वही जहाँ हमने सिलसिला हमारा टूटा था कि गुनाह कबीरा के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे रमजान से पहले जो तरबियती सेशन हुआ था, फिर हम इंशाल्लाह वहीं से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब बाद में फिर कभी बात होती है गुनाह कबीरा वगैरह की तो इन डिटेल देखना मुश्किल हो जाता है, या कुरान में भी आता है तो पूरा हमें हर एक गुनाह के ऊपर बात करना मुश्किल होता है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो ये स्टार्ट किया था सिलसिला, तो हम उसको दोबारा कंटिन्यू करेंगे कि कौन कौन से गुनाह कबीरा है। बाज तो हमने देख लिए थे मगर उनकी लिस्ट काफी लंबी है, और कई ऐसे गुनाह भी हैं जिनका हमें मालूम ही नहीं वो कबीरा गुनाह है। तो इंशाल्लाह ताला हम उसको सिलसिले को दोबारा वहीं से फिर स्टार्ट कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो बातें भी की हैं अल्लाह उनके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आप लोगों से भी दरख्वास्त है कि आज जो हमने बात की है सवाब कमाने की, आसान सवाब अमल करने वाले के मुताबिक कि आपको भी अजर मिल जाए, तो उसके लिए आगे तबलीग करें, कुरान की तरफ लोगों को बुलाएं, और ख़ास तौर पे अभी जो दिन रह गए हमारे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास तक उसमें ज़रूर बुलाएं, ताकि हमारी जो नेक्स्ट सूरा स्टार्ट हो रही, नई सूरत स्टार्ट हो रही है, ताकि लोग हमारे साथ इसमें जुड़ें, और अल्लाह ताला करे कि हम सब इस कुरान के साथ मरते दम तक हमारा साथ ना टूटे, इसके साथ ही जुड़े रहें, और अल्लाह इसके जरिए हमें हिदायत नसीब फरमाए, इसको हमारा साथी बना दे हमारी कब्रों में, और इसको हमारे हक में हुज्जत बना दे हशर के मैदान में, इसके जरिए से हमारी बख्शिश कर दे अल्लाह ताला। आमीन या रब्बल आलमीन। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।